اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ڈی کیو 2023، دورہ قرآن 2023. آج ہم اس میں سے کنٹینیو کریں گے 14th پارے کو، سورۃ نحل کے شروع سے. ہم نے دیکھا کہ یہ پارہ ہمیں جو مقصد دے رہا ہے وہ کیا ہے، کہ شکایتوں کے باوجود ساتھ لگے رہنا. جو لوگ شکایتوں سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہیں وہی کائنات کو نفع دیتے ہیں، اور وہی اس کائنات میں سے اپنے لیے کچھ بھی ایسی غذا چھوڑ کر جائیں گے کہ جو دوسروں کو فائدہ بھی دے گی، اور بالآخر جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے نا وہ خود فائدے میں رہتا ہے. یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ابھی ہم سورۃ نحل میں سے ایسی بہت ساری چیزیں دیکھنے والے ہیں. اور اسی میں ہم دیکھیں گے کہ عمار بن یاسر جیسی خوبصورت شخصیت کیسے اللہ نے ان کا تذکرہ ایک آیت میں کر دیا، اور حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے استقامت کا پہاڑ بننے والے بلال کا قصہ، خبیب بن زید انصاری جو کہ اسلام کے رستے میں اتنا آزمائے گئے تھے کہ سولی پہ چڑھا دیے گئے، اور عبداللہ بن خزافہ کے بارے میں آتا ہے کہ ظلم و ستم کے خلاف ڈٹ جانے والے لوگوں میں سے تھے. کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام ڈٹ جاتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایمان جڑیں پکڑ چکا تھا، ڈیپ روٹیڈ تھے، اسلحہ ثابتن. اور جس کے دل میں جتنا ایمان آئے گا نا اتنا وہ شکایتوں سے اوپر اٹھے گا. ہم اپنے ارد گرد اپنوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں ان کے خلاف کچھ شکایتیں پال کر، میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ویسا ہوا، میرا یہ نہیں ہوا، میرا یہ نہیں ہوا، اور اسی طرح سے. اور خاص طور پہ آپ کو پتا کہ 14th پارے میں جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں نا، اور ابھی سورہ ہجر جو ہماری پیچھے سے گزری ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی باتیں تھیں نا. حالانکہ اللہ کے نبی ایک نعمت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت ہدایت کا سر چشمہ قرآن دیا تھا، اسلام دیا تھا. آپ اور میں آج بھی اس کے اوپر غور کریں، اور پیچھے ہم نے جو سورت ہجر کی آیت 88 میں پڑھا تھا کہ ولا تمدن آئی نئی، اپنی آنکھوں کو لمبا نہ کیا کرو ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر جو ہم نے دوسروں کو دی ہیں. آج امت مسلمہ بھی اپنی آنکھیں لمبی کرنے لگ گئی، کثرت، تکاثر، جو مال کما رہے ہیں صرف اس لیے کہ دوسروں سے آگے بڑھ جائیں، اور دوسروں کی چیزیں دیکھ کے آنکھیں ہیرا ہونے لگتی ہیں. اللہ نے کہا نہیں، ہم نے تو آپ کو ایک اتنی پیاری دولت دے دی ہے کہ اس کے بعد تو آپ کو کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم صحابہ کرام پہ غور و فکر کریں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جو ایمان کی بنیادیں تھیں نا وہ اطاعت میں ڈھلی، اور اطاعت آسان ہوتی ہے محبت کے ساتھ. جس سے آپ کو محبت ہو جائے آپ اس کی بات بھی مانتے ہیں، اور پھر آپ اس کو مان بھی جاتے ہیں، پھر آپ کے لیے اس کی بات ماننا مشکل نہیں. یہ بچے اور ماں باپ میں بھی دیکھ لیجئے، اور باقی ہر رشتے میں بھی ہے. پھر صحابہ نے اتباع کی، آپ کا ادب اور احترام کیا، اور آپ پر درود و سلام بھی اللہ کے نبی کی محبت میں پڑھا کرتے تھے. ہم تو ثواب میں پڑھتے ہیں نا، درود و سلام پتہ کیا، کسی کے گنگانا. اور اسی طرح سے پھر ان کے لیے سارے رستے آسان ہوتے گئے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے، دوستی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونے لگی. پھر اللہ کے نبی کے گھر والوں سے محبت ہوئی، اور جنہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ بھی کہا وہ اس سے اپنے آپ کو پیچھے کرے. اگر آپ سورۃ ہجر کی آیت 95 کو دیکھیں جو بالکل اینڈ کے قریب تھی، انا کفینا کل مستہزئین، ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں سے کافی ہوں گے. توہین رسالت، اللہ کے نبی کو رنگیلا رسول کہنا، آپ کے کارٹون بنانا، اور دس اینڈ دیٹ. ہم آج مسلمان جی بہت شکایتیں کرتے ہیں، غیر مسلم ہمارے نبی کے خلاف یہ کہتے، اب وہ قرآن چلانے لگ گئے ہیں، اب قرآن کے پیجز کو ٹوائلٹ پیپر میں یوز کرتے ہیں. آپ کو ان شکایتوں سے اوپر اٹھ کر سچے محب رسول بننا، اپنی زندگی میں جس حد تک ہو میچ کیجئے کپڑے کے ساتھ، جیسے میچ کیا جاتا ہے کپڑے کو، ताकि आपकी मेरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी और सहाबे कराम जैसी हो। जिससे जिसको मोहब्बत होती है वो उसके साथ उस तरह का ताल्लुक इख्तियार करता है। सहाबे कराम की मोहब्बत खोखली नहीं थी, सिर्फ स्टिकर्स देने वाली मोहब्बत नहीं थी, वो करके दिखाने वाली थी। करके दिखाने के साथ स्टिकर्स मिल जाएँ तो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, मोहब्बत का इज़हार करना चाहिए। लेकिन सिर्फ मोहब्बत का इज़हार करके जाकर सो नहीं जाते थे, बात भी मानते थे। इसीलिए आप देखिए कि अल्लाह ताला ने उनको इस पूरी सूरत हिजर का आपको खुलासा दे रही हूँ कि कैसे नबी सल्लम के ऊपर उंगलियाँ थी उस वक़्त, कुफार की, दुश्मनों की बातों की। कभी मजनू कहते इन नकल मजनून, आप ऐसे हैं अजियत, अल्लाह कहते इन सब को पीछे कर दो। और आप कहते हैं कि तौहीन रिसालत के मुर्तकबीन जितने भी गुजरे, सबसे बड़ा अमल हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मिलता है, उनके ख़िलाफ़ जिहाद। जब मक्की दौर था तो नबी के ऊपर ऐसे हो जाते थे, दुश्मनों ने एक मौके पर नबी को मारना चाहा तो अबू बकर सामने आ गए, उन्होंने उनको छोड़ के इनको मारना शुरू कर दिया और ये बेहोश हो गए। और हज़रत आयशा सिद्दीका जो अपने बाप की ये हालत बयान करती हैं कि उनके बाल ऐसे खींचे गए कि बाद में जब अबू बकर के बाल पकड़े जाते तो जड़ों समेत हाथ में आते थे। और जब होश आई तो आपने सिर्फ ये पूछा था कि मोहम्मद कैसे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ सवाब के लिए करते थे वो अजर, वो सदका जारिया के लिए करते थे। देखिए नेकियां करता है इंसान, उसमें भी अगर आप अपना लालच रख के कर रहे हैं ना, वो रंग नहीं होगा। देखिए वो जो आपके अंदर से उबले, उसके बगैर चैन ना आए, आपके मैं इसके बगैर नहीं रहूँगी, ये हो नहीं सकता। अब्दुल्ला बिन उमय मक्तूम अपनी लौंडी को कत्ल कर दिया और अल्लाह के नबी ने इसका खून जो था वो रायगां करार दे दिया। यहूदी काब बिन अशरफ को कत्ल करने का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया, मोहम्मद बिन मुसलिमा ने अपने साथियों के साथ जाकर उनको कत्ल किया, बुखारी की रिवायत है। यानी उसके जराइम इतने थे कि अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करता, हजफ में शेर कहता यानी मजाक उड़ाता आपका, इश्किया अशार करता, वो मुसलमान औरतों की हुसन की दास्तानें बयान करता, अल्लाह के नबी के कत्ल की साजिशें की, अहद को तोड़ दिया। लिहाजा मुशरिकीन मक्का को अल्लाह के नबी के खिलाफ उकसाता था। अल्लाह ने कहा इसको मरवा दो, नबी ने इशारा किया, साहबा जाकर कर गए। यहूदी तो उसका नाम था अबू राफे, उसने अब्दुल्ला बिन अतीक छोटे काफ के साथ, बड़ा काफ नहीं है, उन्होंने ज़ख्मी किया उनको और अल्लाह के नबी सल्लम के कत्ल की कोशिश का जो था बदला लिया। यानी वाकया तो इतने हैं कि जिससे आपको ये बात समझ आएगी कि सहाबा नबी के सच्चे मुहिब थे। आज 2 बिलियन उम्मत मिलकर नबी का दिफा न कर सके और वहाँ 100 कुछ लोग आपके नाम पे मर मिटने को तैयार और मुल्क छोड़कर हिजरत कर गए, अल्लाह अकबर कबीरा। एक औरत थी जिसका यानी जिक्र करने की ज़रूरत थोड़ी सी इसलिए है कि आज के दौर में भी कुछ लोग अल्लाह के नबी के ज़रिए आई भी शरीयत का इनकार करते हैं। अल्लाह के नबी को गालियाँ देती थी, खालिद बिन वलीद ने उसको कत्ल कर दिया, इस तरह नज़र बिन हारिस, हुरैस बिन नकीर, हज़रत अली ने इनको अल्लाह के नबी के हुक्म पे कत्ल किया। ये सारी बातें आज हमें नहीं समझ आएंगी। सीधी सी बात है, जो आज फ़र्ज़ और सुन्नत और नफलों में फ़र्क करके बैठे हैं ना, उनको नबी की ज़ात पे बात कोई करे, कोई गाली दे, कोई मजाक उड़ाए, कार्टून बनाए, उनको ये बातें समझ नहीं आएंगी जी। इसी तरह आप देखिए कि हज़रत उमैर बिन उमैया, उनकी सगी बहन थी लेकिन मुशरिका थी, अल्लाह के नबी को गालियाँ देती थी, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। आप सोचिए ना, ये हालात हैं। ये पूरा टॉपिक है एक पढ़ने वाला, लेकिन सिर्फ सूरह हिजर में, चूँकि पीछे हमारी इस पे बात नहीं हो सकी तो अगली सूरत पे ले जाने से पहले आपको ये बातें बता रही हूँ। सहाबा कराम के दिल जुड़े हुए थे, अंदर से नथी थे। आपने भी तो कभी किसी से मोहब्बत की है ना, मोहब्बतों में तो बंधे हुए हम। जो इससे मोहब्बत होती है ना, उसकी गलत चीज़ को भी बंदा डिफेंड कर रहा होता है। इसी तरह उमैर भी नदी साहबी थे, अपने ख़ानदान के एक शख्स को उन्होंने सिर्फ नबी की हज करने के ऊपर पकड़ लिया था। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपना ताल्लुक बिर रसूल देखें, कैसे अल्लाह के नबी के ये प्यारे साथी इस तरीके से कट मरने को तैयार थे। कोई उनको जन्नत के टिकट नहीं दिखाए जाते थे, कोई उनको इस तरह की बातें नहीं कही जाती थी ये कर लो तो ये महल मिलेगा। वो वाकई देवर इन लव ऑफ प्रॉफिट, देवर डीप लवर, मोहब्बत का। वो किसी महीने का इंतज़ार नहीं करते थे, साल का, दिन का, हफ्ते का, सेलिब्रेशन का इंतज़ार नहीं करते थे। उनको ये था कि मेरे नबी के ऊपर कोई बात करे तो क्यों करे। और अबू जहल को किसने कत्ल किया? 2 बच्चों ने। अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास आकर पूछते हैं कि चचा अबू जहल किधर है। कहा क्यों तुम्हें क्या हुआ। कहा हमारी माँ कहती है कि वो मक्का में नबी को गाली देता था। बच्चों ने नहीं देखा, सिर्फ माँ से वो स्टोरी सुन सुनकर पता चल गया था कि अबू जहल जो था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। कहा अभी इतनी बात कर रहा था कि वो दूर से दिखा शुतुरमुर्ग का पर लगाकर अपने प्रोटेक्टर से होते उसके इर्द गिर्द खड़े थे। ये दोनों के दोनों ने तलवार इकट्ठी मारी, बाद में दोनों खून लगा हुआ लेकर आए। वो कहता मेरी तलवार, वो कहता मेरी तलवार। अल्लाह के नबी ने कहा लाओ, तूने तलवार साफ तो नहीं की। कहा नहीं। कहा देखो, क्योंकि मैं दुश्मन खुदा का खून पहचानता हूँ, नबूवत का मौजज़ा था। आपने देखा, आपने कहा तुम दोनों की तलवार पर यक वक्त उसको लगी है, तुम दोनों ने उसके ऊपर हाथ उठाए। अब आज आप ये बात अपने बच्चों से कर सकते हैं, वो कैसे तलवार उठाएंगे, उनको तो अभी आपने नबी की मोहब्बत नहीं दी, तलवारें तो छोड़ी अभी कलम नहीं उठे। इसलिए ये मौजूआत हमें बड़े अजीबोगरीब लगते हैं। तो अब इसके बाद हम इंशाल्लाह सूरत नाहल जब शुरू करने लगे हैं तो इसमें आप देखेंगे अल्लाह की कुदरत। नाहल शहद की मक्खी को कहते हैं, शिकायात से ऊपर उठकर काम करती है, उसमें वहाँ कोई बड़े छोटे होने का तसव्वुर ही नहीं है, कोई लीडर और फॉलोअर्स वाली कहानी नहीं। हाँ, अल्लाह ने एक को मलका बना दिया, बाकियों को वर्कर्स बना दिया। इंशाल्लाह सूरत के एंड पे इसका अंदाज़ अभी मेरा क्या होगा कि तकरीबन शुरू के 8-10 रुकू क्विकली पढ़ूंगी, क्योंकि वो सिर्फ तस्कीर है। इस सूरत का एक और नाम लिख लें, सूरत नेम, नेमतों वाली सूरत। और अक्सर मैं लोगों को कहती हूँ कि आप इस सूरत को पढ़ते वक्त फ़ील किया करें कि आप यूरोप की किसी ट्रेन में बैठे हैं और आपके पास से मनाजिर से एक बढ़ के मंजर गुजरता है। जिन्होंने कभी विद इन यूरोप ट्रैवल किया हो ना बाय ट्रेन, वो मेरी इस बात को समझेंगे। लेकिन कहीं भी ट्रेनों में जाएं तो सबसे ज़्यादा मनाजिर ट्रेन के साथ बंदा इंजॉय करता है, एक मंजर फिर दूसरा, और इसको अपने दिल पे लेना है इंशाल्लाह। हाँ, इस सूरत का जहाँ एंड आएगा तो वहाँ काफ़ी आयात हैं जिस पे हम थोड़ी बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 128 आयात हैं, 16 नंबर की सूरह। एक छोटी सी शहद की मक्खी जिसको हम पास नहीं फटकने देते, अल्लाह ने उसके नाम पे सूरत दे दी, कोई वजह होगी, और वजह वही है, शिकायतों से ऊपर उठकर अपने हिस्से का काम करती है, और वो काम कर कर आके दुनिया से चली जाती है और लोगों से सिले की तवक्को नहीं रखती। अल्लाह मुझे भी शहद की मक्खी बना दे और आपको भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलू। रुकू नंबर 7, 1-9। अल्लाह के इंसान पर अनगिनत एहसानात का तذکرہ है। अल्लाह ताला का हुक्म आ पहुंचा, यानी क़यामत का भी और नबी के आने का भी। अब तुम इसकी जल्दी ना मचाओ, यानी अजाब का भी और क़यामत का भी। अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, अब इसकी जल्दी ना मचाओ। तमाम पाकी इसके लिए है जो बरतर है इन सब से, जिन्हें ये अल्लाह के नज़दीक शरीक ठहराते हैं। वही है फरिश्तों को अपनी वही देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है उतारता है कि तुम लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम मुझसे डरो। नोट किया आपने वही का पैगाम, ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी सिर्फ इस एक हुक्म को बताने के लिए भी आते तो काफ़ी था, और वो क्या कि लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, बस मुझसे डरो, यानी तकवा और तौहीद। इसी ने आसमान और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया और वो इससे बरी है जो मुशरिक करते हैं। इसने इंसान को नुतफे से पैदा किया, फिर वो सरीख झगड़ालू बन बैठा। चंद सेकंड के लिए ज़रा गौर कीजिए, इंसान की तख्लीक किस चीज़ से हुई। अभी हिजर में 2-3 दफ़ा पढ़ कर आए हैं ना, सलसाल, काली सड़ी हुई मट्टी, कीचड़, बना किस चीज़ से। और ज़रा सा बड़ा होता है ना तो खुदाई का दावा कर देता है। देखिए, कभी सोचिए कि इंसान को सोने से नहीं बनाता अल्लाह, चांदी से, हीरे से, मोती से तो सच ज़मीन पे रखता। एक नुतफे हकीर चीज़ से बना हुआ इंसान जब बड़ा होता है तो खुद खुदा बन जाता है, खुदाई का दावेदार बनता है, अल्लाह के आगे नहीं झुकता। लोगों को अपने आगे झुकाता है, ना रब्बु को मलाला, और अपने नफ्स के आगे झुकता है। अल्लाह कहता है ज़रा देखो कितना झगड़ालू है। इसी ने चौपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास है, और भी बहुत से नफ़े हैं, और बस तुम्हारे खाने के काम आते हैं, यानी लेदर की तरफ इशारा है कि चमड़े की खालें और जैकेट्स पहन के तुम -20 में फिरते हो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कैसी नेचुरल मशीनें बना दी इधर कायनात में जो तुम्हारे लिए जैकेट्स का सामान तैयार करती हैं, और बस तुम्हारे खाने के भी काम आते हैं, गोश्त खाते हो। आज गोश्त खाने को भी लोगों ने एक अजीबोगरीब कहानी बना दिया, मर्सी किलिंग, नहीं बेचारे जानवर है नहीं खाएंगे, नहीं मेरी बच्ची बच्चा तो गोश्त नहीं खाता ही। वो कहते हैं हाय आपने जानवरों को ज़िबा कर दिया, लो इंसानों को गाजर मूली की तरह आप काटो और जानवरों के हकूक पे आपने ऑर्गेनाइजेशंस बना दी, तो अल्लाह ने क्यों पैदा किया फिर? और जिन जानवरों को अल्लाह ने आपकी मेरी खुराक बनाई उसकी तादाद देखिए, और इसके बरक्स गीदड़ शेर चीते कितने को हैं। यानी ये आज के दौर के फितने हैं गोश्त नहीं खाना, क्यों भाई? ये जानवरों पे जुल्म है। देखिए शैतान ने जो दावा किया था ना, आप सूरह निसा में पढ़कर आए हैं कि वला अमुरन्नहुम, में क्या था? अल्लाह की तख्लीक को बदलेंगे, फला युगैरन्ना खल्क अल्लाह। ये बिल्कुल उसी की कहानी है। दिल खोल के गोश्त खाइए, कोई बुरा नहीं है। बल्कि आज डॉक्टर्स कहने लगे कि आप ये जितने ग्रेन्स खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उससे बेहतर मीट है। हमारे यहाँ मीट के साथ पूछते हैं और क्या खाना है, मीट के साथ मीट ही खाइए, पानी पी लीजिए। लेकिन बहरहाल ये बात बहुत ज़रूरी थी। बाहर की दुनिया में 80-90% बच्चे अब गोश्त नहीं खाते, वाइट मीट खा लेंगे थोड़ा बहुत। अगली सदी में वो भी हराम कर देंगे, हाय मुर्गियों पे जुल्म हो रहा है। भाई आप अल्लाह से बढ़कर ज़्यादा खैर ख्वाह हैं इन जानवरों के, इसीलिए फिर आगे फरमाया और इनमें तुम्हारी रौनक भी है, जब चरा कर लाओ यानी गेजिंग करवाओ तो तब भी, और जब चराने ले जाओ तब भी, और वो तुम्हारे बोझ इन शहरों तक उठा ले जाते हैं जहाँ तुम बगैर आदि जान किए पहुँच ही नहीं सकते थे। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा शफीक और नहायत मेहरबान है, यानी उसको सारे जानवरों के हकूक का तुमसे बहुत अच्छा पता है। घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को इसने पैदा किया कि तुम इनकी सवारी लो, और वो बायस ज़ीनत भी हैं। वो और भी बहुत सी चीज़ें पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। ये कौन सी हैं? गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर, चिमची, साबा के दौर में नहीं थी। अल्लाह ने इसमें वो गाड़ियों के नाम लिए बगैर कह दिया कि तुम आज घोड़ों पे तो सफ़र नहीं करते। अब लोग कहते हैं घोड़े पे बैठना सुन्नत है, तो गाड़ी पे बैठना सुन्नत नहीं है अल्लाह के बंदो? गाड़ी होती है अल्लाह के नबी के पास सबसे अच्छी गाड़ी होती। यानी ये जो आज हमारा एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया ना कि पैसे वाले तो बस जहन्नमी, अल्लाह पूछेगा, भाई आप थोड़े हैं पूछने को जो अल्लाह ने पूछना है। अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम्हारी सवारी यार बायसे जीनत है। हाँ एक शर्त है, बड़ाई का एहसास ना हो, गाड़ी का नाम आपका सिंबल ना बन जाए, लैंड क्रूजर, फरारी, फुलां फुलां, दिखावे के लिए ना हो, चलाने के लिए ना हो, आपका कंफर्ट है, आप इजी फील करते हैं। जाइए आप 10 घंटे दूर सफ़र कर रहे हैं और आप कोई सुजुकी पे जाएंगे या जिस गाड़ी पे 4 दफ़ा बीच में रुक के धक्का लगाएं तो आप नेक होंगे। यानी ना गाड़ी के बड़े होने से आपके कम नेक होने का ताल्लुक है, और ना ख़राब गाड़ी के ताल्लुक से आप कोई बहुत ही बेचारे नेक हो जाएंगे। ये बेकारियात हैं, ये मादी चीज़ें हैं। वल्लाही सोना चांदी प्लैटिनियम हीरा 24 कैरेट फलाना कैरेट सब मट्टी है। दिल से निकाल दीजिए इन चीज़ों को, ये अल्लाह की नेमतें, इनको हाथों में रखिए। हमने दिलों में और लॉकरों में और बैंकों में रखा हुआ इनको, फिर हमें जान के भी खतरे, हमें माल के भी खतरे, इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बंदे के माल की 3 ही चीज़ें हैं, उसकी खा लिया जिस्म से कुछ घंटे बाद निकल गया, इस्तेमाल कर लिया चीथड़े बन गए, या अपने हाथ से आगे भेज दिया। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं, माई मनी, इट्स माई डॉलर, दीज आर माई एसेट्स। बाकी तो देखिएगा पीछे लोगों ने क्या लेना। और आज हमारा हाल अमूमियत पे क्या है, आप अपनी ज़िंदगी में सस्काते हैं, तरपाते हैं बच्चों को, बीवी को, एक एक रुपया देने पे रुलाते हैं। मरने के बाद उन्होंने आपके करोड़ों के वारिस बनना है, क्योंकि वो आप नहीं चेंज करेंगे क्योंकि आप नेक है, गलत तरीका है। अपनी ज़िंदगी में अपनी दौलतों को इस्तेमाल कीजिए। कई प्यारी प्यारी बहनें हैं जब कुरान पढ़ती हैं दिल में क्या क्या कहानियाँ होती हैं, मैंने ये देना है, मैंने वो देना है, मैं कहना, उसमें सवाल भी लोग कर देते हैं कई दफ़ा, फिर आखिर में क्या होता है, वो मेरे फुलानी मान रहा, मेरा भाई कह रहा है तुम्हें क्या हो गया, बाप नहीं मान रहा, कोई कह रहा है खबरदार, बेचारे बैकअप हो जाते हैं। तो कोई नहीं, ठीक है, यानी हम ना नेकी करते हैं ना करने देते हैं, और हमारे बाद लोग झगड़ेंगे, लड़ेंगे, सगे भाई बहन खून के रिश्तों के दिलों में एक दरारें पड़ जाती हैं विरासत के माल पर, कोई मुँह से कहे ना कहे, अंदर पड़ी होती हैं। आप क्यों इंतज़ार करें कि आप मरें तो आप हिसाब देने वहाँ कब्र में बैठे हुए, और पीछे झगड़ा? आप ज़िंदगी में बच्चों को भी दे दें, आप दे दें, अभी दे दें उनको, बराबर दे दें, कम दे दें, ज़्यादा दे दें, आपका जहाँ दिल करता लगाइए, खुद भी खुश रहें, बच्चों को भी खुश रखें। और हम इतना संभाल के रखते हैं कि माजरत के साथ, आपके बच्चों से माजरत के साथ, वैसे नहीं है कि वो गैर शौरी तौर पर इंतज़ार कर रहे हैं कि अब्बा जी जाएँ। किसी ने कहा ये तब तुम्हें मिलेगा जब फला जाएगा, अभी चुप करके बैठे रहो, सोचिए आप। चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, तो इस्लाम ये नहीं बताता। अबू बकर के पास दौलत थी, उस्मान गनी के पास थी, और इसके बाद आप ले लें अब्दुलरहमान बिन औफ के पास थी, बैंकों में थी, स्विस बैंक में था उनका खजाना, नहीं उनका माल हाथों में होता था। मज़े की बात बताऊँ, सहाबा का माल पता कब दिखता था? जब तबूक के मौके आते थे, जब इस्लाम को ज़रूरत पड़ती थी, तब पता चला उस्मान के पास इतना पैसा, अब्दुलरहमान को इतना। हमारा पता कब दिखता है? जब हमारे बच्चों की शादियाँ आती हैं, या फिर जब हम घर बनाते हैं, और सो ऑन, अल्लाह की पनाह। अब ये देखिए, जानवरों की बात के बाद फ़ौरन जो आयत आ रही है ना, इसको रिलेट कीजिएगा, और अल्लाह पर सीधी राह का बता देना है, और बस टेढ़ी राहें हैं, और अगर वो चाहता तो तुम सब को राह रास्त पर लगा देता। क्या पता चला कि जैसे ये सवारियाँ आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाती हैं ना, इसी तरह अल्लाह तक पहुँचने के रास्ते हैं। दुआ किया करें, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। साहबा की मिसालें, या आज के दौर में किसी इंसान की कोई अपनी ज़ाती ज़िंदगी की मिसाल सुनकर इस आयत को याद किया करें कि अल्लाह इनके तरह हमें भी कर दे, हमारे भी दिल से माल की मोहब्बत निकाल दें, और ये राहें फिर आपको अल्लाह तक ले जाएगा। और अल्लाह कहते तुम्हें मैं चाहता तो सबको ले जाता, तो राह रास पे लगा देता। तो क्या पता चला इस लेसन से हमने क्या सीखा? क़्यामत के दिन से डरना है, यानी क़्यामत के दिन के बेसिकली मुहासबे से डरना है, फरिश्तों को अल्लाह की मखलूक मानना है, अल्लाह की बेटियाँ नहीं थी, फजूल झगड़ों से बचना है, सिर्फ अल्लाह की राह को अपनाना है, यानी वो रास्ते जो हमें अल्लाह तक पहुँचा दें, और नेमतों का गलत इस्तेमाल नहीं करना, अल्लाह की नेमतों से लुत्फानंदोज़ होइए, वल्लाह ही गिल्ड से निकल जाएं। दौलत है तो है, नहीं है तो नहीं। देखिए इस पर एक लेक्चर मैंने ना अभी इसी साल में दिया है, अमीरी और गरीबी का इस्लाम का कॉन्सेप्ट। साहब अमीर नहीं थे, हमें जो कॉन्सेप्ट दिए गए ना, साहब सब गरीब थे, बोरिए पे सोते थे, कच्ची ज़मीन थी, ठीक है मान लेते। देखिए फितरत का असूल याद रखिए, अमीरी और गरीबी रात और दिन की तरह हकीकत है। नंबर दो, इस पे आपका मेरा इख्तियार नहीं है। आप अपने बच्चे को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री दिलवा दें, अगर उसको जॉब नहीं मिलनी, उसको रिस्क नहीं मिलना, तो नहीं मिलना, बिलाखर उसने अब्बा जी के साथ जाके दुकान पे ही बैठना है, पक्की बात है। आपकी डिग्रियों और स्टडीज़ और इन चीज़ों से दौलत का कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी बात याद रखिए, ये ख़त्म नहीं हो सकती। रशिया ने सोशलिज्म के नाम पे या कम्युनिज्म के नाम पे किया हो, किसी और ने किसी और नाम पे किया हो, किसी ने कहा सारा गवर्नमेंट को दे दो, किसी ने कहा सारा तुम ले लो, इस्लाम कहता है 97.5 तुम ले लो, 2.5 मुझे दे दो, इट्स रियलिटी। अगर दौलत जायज़ ना होती तो ज़कात क्यों है बताइए मुझे? अल्लाह ने विरासत के काम क्यों दिए हैं? सारे कंगाल होकर दुनिया से जाते तो विरसा कैसे बढ़ता? तो अमीरी और गरीबी हकीकत है, सहाबा ने इसको एक्सेप्ट किया। आज के अमीर और कल के अमीर और गरीब का फ़र्क एक जुमले में बता के आगे ले जाती हूँ। कल के दौर में, यानी सहाबा की बात ही कर रही हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो अमीर सहाबा से भी आपका तारुफ कराऊंगी और गरीब सहाबा से भी कराऊंगी। जो अमीर था ना, वो इस अमीरी की वजह से बाइज्जत नहीं था, जालिम नहीं था, खून नहीं चूसता था दूसरों का, लोग उसको सलामे नहीं करते थे। आज तक मुझे एक हदीस और रिवायत नहीं मिली कि किसी ने हज़रत उस्मान गनी को उनकी दौलत के लिए सलामे की, और अब्दुलरहमान बिन औफ का नाम लेके शहर में फैला दिया कि शहर का अमीर तरीन बंदा, बिलियनेरियन, टॉप 10, नेवर, कुछ जिक्र भी नहीं करता था। अमीर अमीरी में मुतमिन था, और इसके अपोजिट आइए गरीब, कभी किसी की गरीबी क्वेश्चन मार्क नहीं थी। हाय बिलारा, हाय फुला, गरीब गरीबी में खुश था, अमीर अमीरी में खुश था। अल्लाह की बांट है, तकदीर के फैसले हैं। एक माँ के पेट से चार बच्चे पैदा होते हैं, एक करोड़ों में खेलता है, दूसरे बेचारे को हो सकता है कि ज़कात भी लग जाए। आपका फैसला नहीं, अल्लाह का फैसला है। इसको मियार ना बनाएं, इसको डिस्कस ना करें। हाँ, सहाबा की नज़रों में क्या था? नेकी, उनकी कमोडिटी और उनकी करेंसी, उनकी वजह शोहरत नेकी थी। फलां कितनी नेकी करता है, आपने कई वाक्यात नहीं सुने? अच्छा, अभी आज यहाँ से वो गुजरेगा जो जन्नती है। अच्छा, अल्लाह के नबी किसी की नेकियाँ आसमान के सितारों जितनी भी हैं, किसने पूछा? आयशा सिद्दीका ने पूछा। लफ्ज़ नेकी 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 बड़ा बड़ा अपने बच्चों के, पोतों के, नवासों के, शौहर के, बहन भाइयों के दिलों पे एक लफ्ज़ निकाल दें, आज कितनी नेकियाँ कमाई। और हमारे वाले जब किसी को मिलकर दुआ देते थे ना, आदत थी उनकी, ज़रूरी नहीं कि आप सुने, लेकिन मुझे याद आ गया वो क्या कहते थे, अल्लाह आपको नेकी दे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह आपको नेकी दे, आप लोगों को दुआएं दिया करें, अल्लाह आपको खैर की चाबियां शर के ताले बना दे, अल्लाह आपसे नेकियां ले ले, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। ये दुआएं अपनी दुआ में डालें, गैर महसूस तरीके से फ़ायदा होगा। या एक टिप दे देती हूँ, अपने बच्चों को आज से सहाबा के नामों के साथ कहना शुरू कर दें। मशर हमने कई सहाबा को पढ़ लिया ना, आगे भी बहुत सारे पढ़ेंगे। बेटा अल्लाह आपको उस्माने गनी जैसा दिल दे दे, ज़रा एक कैंडी तो देना। कहते अम्मा अभी नहीं, ज़रा बड़ा हो जाऊँगा फिर दूंगा। बेटा अल्लाह आपको फलां जैसी गैरत दे। तो सहाबा के नाम दीजिए, देखिएगा गैर महसूस तरीके से हमारे बच्चों के हीरोज़ इंशाल्लाह ये बनेंगे।